दिन भर 4 अप्रैल गुरुवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। राहुल गांधी ने वायनाड से किया चुनावी नामांकन, अमेठी में स्मृति ईरानी ने किया उन पर जुबानी हमला।
लापता सांसद जी केरल गए हैं पर्चा दाखिल करने, 15 साल आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में।
उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का भाजपा के साथ हुआ गठबंधन।
हम लोग अब आए हैं अलायंस में और अलायंस को मजबूत करके इस देश की पुनः सत्ता, प्रधानमंत्री जो उनको पुनः गद्दी पर हम लोग बैठाएंगे।
छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवानों की मौत।
मुठभेड़ में अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार हमारा एक एएसआई बीएसएफ का और बीएसएफ का 3 जवान, कुल 4 लोग शहीद हो गए, 2 अधिकारी घायल हुआ।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दोपहर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। नामांकन भरने के बाद राहुल और प्रियंका ने वायनाड में रोड शो भी किया। राहुल ने कहा कि मुझे पता है कि सीपीएम के भाई बहन अब मेरे खिलाफ हमला बोलेंगे, लेकिन मैं सीपीएम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। राहुल वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये ऐलान यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने की। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ये सम्मान दोनों देशों के बीच रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दिया गया है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी जायद मेडल से नवाजा जा चुका है। इथियोपियन एयरलाइंस हादसे के 1 महीने बाद आई पहली आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालक दल आपातकालीन स्थिति के लिए तय की गई सही प्रक्रिया अपनाने के बावजूद विमान को काबू करने में नाकाम रहा। इस हादसे में विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी। इथियोपिया की परिवहन मंत्री डगमावित मोगस ने बताया कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उड़ान के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया था।
The takeoff roll appeared very normal.
प्लेन का टेकऑफ बिल्कुल सामान्य लगा। विमान के चालक दल ने वो सारे कदम बिल्कुल सही ढंग से उठाए जो इमरजेंसी की हालत में उठाए जाने चाहिए थे। इन सारी प्रक्रियाओं का पालन विमान के मैन्युफैक्चरर द्वारा बताए गए निर्देशों के तहत किया गया, लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी प्लेन को काबू नहीं किया जा सका। ये थे इथियोपिया की परिवहन मंत्री डगमावित मोगास के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया में एक बेहद सख्त कानून पारित किया गया है जिसके मुताबिक अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यहाँ मौजूद हिंसक वीडियो तुरंत नहीं हटाता है तो उसके सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव को जेल की सज़ा हो सकती है। इतना ही नहीं, बड़ी कंपनियों को ऐसी स्थिति में अरबों डॉलर का जुर्माना या फिर ग्लोबल टर्नओवर का 10% हिस्सा देना पड़ेगा। ये कानून पिछले महीने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों में हुए हमले के बाद पारित किया गया है। इन हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई थी और हमलावर ने इस पूरे अपराध को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया था। हमलावर ऑस्ट्रेलियाई मूल का था। इस कानून की काफ़ी आलोचना भी हो रही है और कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद ने कानून जल्दबाजी में पास किया है और आगे जाकर ये सेंसरशिप में तब्दील हो जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के सूचना मंत्री मिच फाइफील्ड ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार होना ही पड़ेगा। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक यहां अमेरिका समर्थित सुरक्षा बलों के हमले में बच्चों समेत 12 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। एसडीएफ के सुरक्षा बलों ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसे विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत के एक शहर में गोलीबारी की थी। सीरिया में मौजूद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 24 घंटों में यहां सुरक्षा बलों की सैन्य कार्रवाई में कम से कम 17 लोग या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल राज्य की वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी 2004 से अब तक उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दो सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पर्चा दाखिल करने के बाद राहुल ने कहा कि उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने का इसलिए फैसला लिया है ताकि वो ये संदेश दे सकें कि भारत एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस जिस तरह से काम कर रहे हैं वो दक्षिण भारत की भाषा और संस्कृति पर हमले की तरह है।
केरला ऑफ द साउथ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, देयर इज एन असॉल्ट टेकिंग प्लेस, एन अटैक टेकिंग प्लेस बाय आरएसएस बीजेपी नरेंद्र मोदी। And I felt it was very important that I give a message to the country. I will stand from South India.
साथ ही राहुल ने कहा कि वो सीपीएम के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार के तीसरे शख्स हैं जो दो सीटों से एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में आज कैसा रहा ये दिन, सुनिए इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
हमने एक फूल मांगा, हमें एक बगीचा ही दे दिया। हमारे देश में राज करने के लिए और सुरक्षा देने के लिए हाथ के निशान पर वोट करें। इस तरह की नारेबाजी हमने तभी सुनी थी जब उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कर्नाटका के चिकमंगलोर लोकसभा क्षेत्र से 40 साल पहले चुनाव लड़ने आई थी। उत्साह इस तरह का था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी हजारों की तादाद में मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पराए हैं, तो एक कांग्रेस के समर्थक ने कहा,
सो वी आर आवर लीडर इज राहुल गांधी, सो वी आर सपोर्ट राहुल गांधी, दैट्स वी वांट ए लिबरल पॉलिटिकल लीडर।
राहुल गांधी पराए नहीं है, वो भारतीय हैं। हमें एक उदारवादी नेता चाहिए, इसीलिए तो हम राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। एक और समर्थक से जब पूछा गया कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देते हैं और अमेठी सीट पर ही बने रहते हैं तो क्या होगा, उन्होंने कहा,
हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर रिजाइन किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप लोग सेलेक्ट किया नहीं, से 2 लाख का ऊपर जाएगा हम लोग का पूरी बच्चे, ओके, और उत्तर प्रदेश का वो अभी अमेठी कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप इलेक्ट करेंगे वायनाड से, मगर वो
पक्का 2 लाख का ऊपर बोनस मिलेगा,
तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो यहाँ से रिजाइन मत करें?
नहीं नहीं नहीं, अब वो तो वो लोग को छोड़ेगा, और अपना राहुल जी पूरा
करूँगा, छोड़ेगा तो हमको कोई बात नहीं, वो तो इधर तो हमारा आदमी है अभी, इसलिए तो हम लोग बहुत खुशी में थे।
भाई साहब, हम लोग वायनाड वाला ना बहुत खुशी में, वायनाड आना, इधर रास्ता भी नहीं है, इधर कुछ नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, इधर हेलीकॉप्टर आने का हेलीपैड भी नहीं है, हम लोग ना इधर पार्टी नहीं देखता, इधर कांग्रेस मार्केट।
शाजी जोसेफ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा,
अभी केरला में अभी सबसे लोग राहुल का अभी बहुत प्यार भी है और बहुत इंतजार कर रहे हैं राहुल का, पूरा अभी आने का लिए हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। वो इसका बार में हम लोग एक बार देखे के बाद में हम लोग बहुत खुशी से, क्योंकि इंडिया का पॉलिटिक्स का बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादा पॉलिटिक्स मालूम नहीं है, फिर भी हम लोग एक चेंज हम लोग पूरा अपनी बहुत इंतजार कर रहे हैं।
वायनाड जिले के हेडक्वार्टर्स कलपेट्टा में आम तौर से चर्चा ये थी कि राहुल गांधी कितने वोटों से जीतेंगे। यही देखना होगा कि वाम मोर्चा के पीपी सुनीर राहुल गांधी को किस तरह की चुनौती देंगे, क्योंकि इस समय एनडीए यहां मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं लग रहा है। इमरान कुरैशी, बीबीसी, वायनाड लोकसभा क्षेत्र, कलपेट्टा।
एक ओर जहां केरल के वायनाड में पर्चा दाखिल करने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, वहीं दूसरी ओर राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रैली की। उन्होंने इस रैली में राहुल गांधी पर खुलकर जुबानी हमला बोला।
आज लापता सांसद जी केरल गए हैं पर्चा दाखिल करने, उनसे कहना चाहती हूँ कि 15 साल आप खाद की एक रैक नहीं उतार पाए अमेठी में, अब जाकर केरल की जनता को छलते हो। अरे देश की जनता को अगर नेतृत्व क्षमता देखनी है कांग्रेस पार्टी की, तो आकर एक बार गड्ढों से भरी अमेठी को देख ले, आकर एक बार अमेठी के उन घरों को देख ले जिनमें भीषण गर्मी में आग लगती है, तो लापता सांसद पानी तक पहुंचाने की तकलीफ नहीं उठाता।
ये थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो फिर एक बार भाजपा की ओर से अमेठी से चुनाव मैदान में हैं। बात उत्तर प्रदेश की ही, जहां भाजपा को एनडीए में एक और नया साथी मिल गया है। पूर्वांचल के इलाकों में प्रभाव रखने वाली निषाद पार्टी ने आज सपा बसपा आरएलडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने की घोषणा की। दिलचस्प बात यह है कि गोरखपुर उपचुनाव सपा के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे प्रवीण निषाद अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या है इसके मायने और चुनावी राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानने की कोशिश की है समीरात्मज मिश्र ने इस रिपोर्ट में।
करीब एक साल पहले बीजेपी का गढ़ समझी जाने वाली गोरखपुर सीट पर विपक्षी एकता के प्रतीक के तौर पर लोकसभा में सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतने वाले प्रवीण निषाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके पिता के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी ने भी विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अब उन्हें वो करने का मौका मिलेगा जो वो करना चाहते थे।
जिन्हें आजादी के 70 साल बाद कुछ नहीं मिला, मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि अभी तक तो सोचते रहे और आगे हम लोग मजबूती से दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये देश चाहता है कि जिन जिन की समस्याएं नहीं हल हो पाई हैं, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारे आम दल का गठन ही इसीलिए हुआ है कि हम लोग अब आए हैं अलायंस में और अलायंस को मजबूत करके इस पुनः हम लोग चाहते हैं कि देश की पुनः सत्ता प्रधानमंत्री जो उनको पुनः गद्दी पर हम लोग बैठाएंगे।
गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने प्रवीण निषाद को उतारा था। यह सीट योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। प्रवीण निषाद को बीएसपी ने भी समर्थन दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी की यहां हार हुई। हालांकि निषाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी था। इसके पीछे वजह सीटों के बंटवारे में होने वाली दिक्कतें बताई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक प्रवीण निषाद को बीजेपी में शामिल करने के पीछे भी यही वजह है कि गोरखपुर सीट बीजेपी किसी अन्य सहयोगी दल को नहीं देना चाहती है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि प्रवीण निषाद के पार्टी में शामिल होने के बावजूद जरूरी नहीं कि गोरखपुर से उन्हीं को टिकट मिले।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना स्वीकार किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल कराया है और उनकी निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है। पार्टी किसको कहां पर कौन सा टिकट देगी, किसको चुनाव लड़ाएगी, ये पार्टी का निश्चित क्षेत्र से तय करेगा, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा।
वही वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र गठबंधन में शामिल होने के इस तरीके को कुछ इस रूप में देखते हैं।
राजनीति का स्तर कितना खराब हो गया है, कोई विचारधारा, कोई कमिटमेंट, कोई ये नहीं चाहिए। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनको दो तरह से बांधा है, गठबंधन का हिस्सा भी बनाया और बेटे को पार्टी में लेकर के ये बता दिया है कि देखो ये जीतेगा तो हमारा आदमी होगा। यानी निषाद पार्टी ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं होगी, जो कि आमतौर पर छोटी छोटी पार्टियां करती हैं, जैसे भारतीय समाज पार्टी आज की तारीख में बीजेपी के साथ कर रही है। यानी वो अंदर उन्होंने उनके बेटे को ले लिया है और ये जो बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स से छोटे छोटे दल कर रहे हैं, जातीय दल बना के उन पर अंकुश तरीका भी है।
पूर्वांचल में निषाद समुदाय का वोट काफी ज्यादा ही नहीं बल्कि कई सीटों को प्रभावित करने वाला भी होता है। हालांकि निषाद पार्टी के विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ने के बाद ही सपा ने गोरखपुर में रामभुआल निषाद को मैदान में उतार दिया। अब यदि बीजेपी भी प्रवीण निषाद या फिर निषाद समुदाय के किसी अन्य उम्मीदवार को उतारती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होंगे, लेकिन इस वक्त दोनों मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा के लिए प्रत्याशियों का चयन आसान नजर नहीं आ रहा है। 29 सीटों वाले इस प्रदेश में भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 9 नाम घोषित किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज 12 और नामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। दोनों ही मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। राजधानी भोपाल के साथ ही भाजपा अभी तक इंदौर और विदिशा में भी अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। इंदौर जहां से लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन चुनाव लड़ती हैं और विदिशा जहां से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पिछला चुनाव लड़ा था वहां पर अभी तक पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाई है। सुमित्रा महाजन का टिकट कट सकता है, वहीं सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इधर भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बेमन से चुनाव में उतरे दिग्विजय सिंह इसे एक चुनौती के तौर पर ले रहे हैं।
जब मैं माननीय राहुल गांधी जी से मिला तो मैंने उन्हें अनुरोध किया, यदि आप मुझे लोकसभा में चाहते हैं तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो घर का है वो राजगढ़ है, और यदि आप उसके अलावा मुझे जहां से लड़ना चाहें मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी मुझसे कह रहे हैं कि मुझे मध्य प्रदेश की किसी कमजोर सीट से लड़ना चाहिए। मैंने कहा मुझे उसमें मैं मंजूर करता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में ही कह चुका हूं कि चुनौतियां स्वीकार करना मेरी आदत है।
वहीं प्रत्याशियों को लेकर हो रही देरी को लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। पार्टी जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेगी उसकी जीत सुनिश्चित होगी। पार्टी में सभी बराबर हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कहते हैं,
अंतिम सत्य है पार्टी, चुनाव चिन्ह और पार्टी का नेतृत्व। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। इस कारण से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, व्यक्तियों का महत्व नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। कोई भी आदमी वहाँ से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी की परंपरागत और अच्छी सीटें हैं। 3 दशक से ज़्यादा हमें हो गए जब सबसे हम सीटें जीत रहे हैं, और इस कारण से इन सीटों पर हमें विजय प्राप्त होगी। उम्मीदवार कोई भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले चुनाव की तुलना में वो इस चुनाव में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस को थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद पलटा भाजपा का ही भारी रहेगा। शिव अनुराग पटेरिया बताते हैं,
देखिए आज की स्थिति में मैं मानता हूं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कोई बड़ा प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं कर पाएगी। अगर आज की स्थितियों को देखा जाए और आज की स्थिति में चुनाव को हम आकलन करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 से लेकर 7 सीटों तक काबिज हो सकती है। जो अन्य सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में 5-7 सीटों का नुकसान हो सकता है, वहीं कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में 3 से लेकर 5 सीटों तक का या 7 सीटों तक का लाभ हो सकता है।
2014 में मोदी लहर के दौरान कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा 27 सीटों में जीतने में कामयाब रही थी। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह उन सीटों को बचाए रखे जिसमें उसने चुनाव जीता था। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
चुनावी खबरों के बाद अब बात अन्य खबरों की। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित कांकेर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में आज बीएसएफ के 4 जवान मारे गए। महाराष्ट्र की सीमा से लगे इस इलाके में 2 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजधानी रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बीएसएफ के जवानों पर पिछले 6 महीने में कांकेर जिले में यह तीसरा बड़ा हमला उस समय हुआ जब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बीएसएफ की 114वीं बटालियन के जवान मोहला के जंगल में निकले हुए थे। एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी सुंदर राज पी ने बताया,
आज कांकेर जिला में प्रधापुर थाना क्षेत्र में महिला करके एक कैंप है, उस कैंप से नक्सल विरोधी अभियान के लिए हमारा बीएसएफ की पार्टी बाहर निकले थे। उसके साथ एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार हमारा एक एएसआई बीएसएफ का और बीएसएफ का 3 जवान, कुल 4 लोग शहीद हो गए, 2 अधिकारी घायल हुआ। घायलों के लिए अभी बेहतर इलाज के लिए उनका रायपुर लेने के लिए प्रयास जारी है। अभी भी आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है।
बीएसएफ के जवानों पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब 2 सप्ताह बाद इस इलाके में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और चुनाव के लिए अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि डीआईजी सुंदरराज का कहना था कि गर्मी के दिनों में माओवादी हमलों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इस हमले को चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है।
डायरेक्टली इस घटना को चुनाव से हम ताल्लुक करके देख नहीं सकता है। जिस समय पूर्व में बताया थे या गर्मी के समय टीसीओसी अभियान संचालित होते नक्सल के द्वारा, इस दौरान मतलब हमेशा एक्शंस ज्यादा होते हैं। काफी हम लोग का भी सफलता प्राप्त हुई, काफी डेड बॉडीज हम भी रिकवर किया थे, लेकिन इस अवधि में लगातार एक्शंस ज्यादा रहते हैं। हम उसी दृष्टि से आने वाले समय में एक ऑफेंसिव ऑपरेशन प्लान के तहत कार्रवाई करेगा।
बीएसएफ के जवानों पर माओवादी हमले के बाद कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव के दौरान माओवादी हिंसा को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ ने दूसरे राज्यों के साथ जल्दी ही एक बैठक आयोजित करने की बात कही है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
श्रोताओं, अब समय है आपके पत्रों के बारे में जानने का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हूं राजेश प्रियदर्शी।
और मैं हूं सरोज सिंह।
तो चलिए शुरू करते हैं चिट्ठियों का सिलसिला।
आज ईमेल से ही शुरू करते हैं। पहला ईमेल है गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से लिख रहे हैं। कल शाम की सभा को राजेश जोशी साहब ने अंजाम दिया। उनकी मधुर आवाज में समाचारों की गंभीरता को सरल बना दिया, लेकिन वो सारिका जी को बहुत मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कहाँ हैं बताएं प्लीज।
सारिका जी यही हैं, टेलीविजन के कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। ये सा अक्सर होता है कि लोग एक किसी खास जगह काम करते हैं तो लोग उनको दूसरी जगह मिस करने लगते हैं। अगर कोई ऑनलाइन या डिजिटल पे काम करने लगता है तो लोग कहते हैं रेडियो पे क्यों नहीं आते, रेडियो पे लोग होते हैं तो कहते हैं कि आजकल उनकी रिपोर्ट नहीं पढ़ने को मिल रही वेबसाइट पे, तो ये होता रहता है। लेकिन सारिका जी बिल्कुल दफ्तर में हैं, आज भी हैं और काम कर रही हैं।
हम बता देंगे रोटा मैनेजर को कि वो रेडियो पे उनकी शिफ्ट ज़रूर लगा दें जल्द ही आपके लिए। लेकिन उनका एक दूसरी शिकायत भी है। उन्होंने लिखा है, सोमवार दिन भर में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर विस्तृत खबरों का विश्लेषण सुनने को मिला। आपने विशेषज्ञ उर्मिलेश के विचार सुनवाए। वे किस प्रकार ये कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो अब तक का सबसे बेहतरीन मैनिफेस्टो है, जबकि इसमें ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। वो ये चाहते हैं गौतम दत्ता जी कि इस पर हम उन्हें बताएं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा।
ये उनकी राय है और उन्होंने ज़रूर बताया होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जब उन्होंने कहा होगा कि सबसे अच्छा है तो किस हिसाब से अच्छा है ये भी कहा होगा। ये उनकी अपनी राय है, ये बीबीसी की राय नहीं है। और किसी भी राजनीतिक घोषणा पत्र को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र पर खासी चर्चा होती है, विवाद होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
रेहान फजल जी की टीएन सेशन पर विवेचना थी, वो सुनी। ऐसा लिख रहे हैं मदन लाल लंबोरिया जी राजस्थान से, और उनका कहना है कि बहुत दिन से वो भी सारिका को मिस कर रहे हैं, लेकिन हम पर एक आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, तुलनात्मक रूप से आप राहुल गांधी और मोदी में राहुल के प्रति नरम नजर आते हैं, ऐसा कहना है मदन लाल जी का।
मदन लाल जी, हम राहुल गांधी के प्रति न नरम हैं न नरेंद्र मोदी के प्रति सख्त हैं, लेकिन इस वक्त जब बात होती है तो सत्ता पक्ष में और प्रधानमंत्री पद पर इतने समय से 5 साल से नरेंद्र मोदी रहे हैं, तो जाहिर है कि ज़्यादा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं। और राहुल गांधी की अपनी जिम्मेदारी भी है, हम उनके कामकाज के बारे में, उनके निर्णयों के बारे में हम लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन हम उनसे प्रधानमंत्री की तरह तो सवाल नहीं पूछ सकते, हम उनसे विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल पूछ सकते हैं, जो हम ज़रूर पूछते हैं।
यूएसए से लिखा है एक ईमेल दुष्यंत साहब ने, और उनका एक सुझाव है कि आप सभी प्रस्तोता हिंदी में प्रस्तुत करते हैं, किंतु बीच बीच में आप अंग्रेजी के शब्द बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है।
आपका ध्यान हमारी भाषा पर है, बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग भाषा पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और वो सरल और सहज हो, यही हमारी कोशिश होती है। उसमें कई बार अब हम रेडियो के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें, यही एक सवाल है। ये रेडियो कार्यक्रम है और अंग्रेज़ी के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में आ गए हैं रेडियो की तरह, और उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत कई बार पड़ जाती है, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि हम वैसी हिंदी का इस्तेमाल करें जिसको हम अच्छी हिंदी कहते हैं, और वो अच्छी हिंदी आसानी से समझ में आने वाली साफ सुथरी हिंदी है।
इस बार गणेश प्रसाद जी ने पहली बार चिट्ठी लिखी है और उन्होंने लिखा भी है कि अगर इस बार आपने शामिल नहीं किया मेरी चिट्ठी को तो मैं बीबीसी से ब्रेकअप कर लूंगा। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत डर गई इसको पढ़कर, इसलिए मैंने ये शामिल भी कर लिया।
बहुत अच्छी बात है, अब तो इनको शिकायत दूर हो जानी चाहिए। और ऐसी प्यार भरी धमकियां हमारे बहुत सारे श्रोता देते रहते हैं, मैं उनको अक्सर ये बताता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में चिट्ठियां आती है, हर चिट्ठी को शामिल करना मुश्किल होता है, पत्र लिखते रहिए, हम आपके पत्र बहुत गौर से पढ़ते हैं और उनके सुझावों के बारे में हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो इसलिए चिट्ठी लिखते रहिए। और हम उन सभी श्रोताओं से कहते हैं कि आप मायूस ना हो और हमें पत्र लिखते रहें, और जिनके पत्र शामिल नहीं हो पाते उनसे हम ये कहते हैं कि हम आपकी चिट्ठी पढ़ते ज़रूर हैं भले कार्यक्रम में शामिल ना हो पाए।
जंग बहादुर सिंह है जमशेदपुर से, उन्होंने लिखा है सलमान रावी की खास रपट बस्तर से जो उन्होंने दी थी वो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उसमें खास तौर पर जो अंतिम वाक्य था, आदिवासियों के लिए विकास का अर्थ होता है एक और विस्थापन, उससे वे बहुत भाव विभोर हो गए हैं और उन्होंने बहुत बहुत सलमान भाई को धन्यवाद दिया है।
बहुत शुक्रिया जंग बहादुर जी, हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत नियमित रूप से सुनते हैं और हमेशा अपनी टिप्पणी भेजते हैं हमें। और इसके अलावा जो विवेचना की तारीफ की एक चिट्ठी मुझे दिखाई दे रही है, ये लक्ष्मण दास शर्मा हैं, मंडलाना नारनौल हरियाणा से इन्होंने लिखा है, और इन्होंने कहा है कि भाई रेहान फजल की बुद्धि को मैं दाद देता हूँ, सेशन पर विवेचना के लिए धन्यवाद। तो आपकी ये तारीफ हम पहुँचा देंगे रेहान साहब के साथ, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपसे विदा लेना चाहिए। आपकी राय में बस इतना ही। अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार। आपके पत्रों के उत्तर दे रहे थे बीबीसी हिंदी सेवा के डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी और सरोज सिंह। और अब समय है खेल समाचारों का, और खेल समाचारों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त
जी। देखिए, अगर इस समय बात की जाए तो आईपीएल की धूम जरूर है, लेकिन इसी के बीच में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी खेला जा रहा है, जहां आज पुरुष एकल वर्ग में भारत के श्रीकांत ने जिन्हें 8वीं वरीयता हासिल है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने थाईलैंड के खोसित फेत प्रब्दा को 21-11 21-15 से हराया, और इस जीत के साथ ही उन्होंने क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है, जहाँ कल उनका सामना चीन के चेनलोंग से होगा। लेकिन अगर महिला एकल वर्ग की बात की जाए तो 5वीं वरीयता हासिल भारत की पीवी सिंधु दक्षिण कोरिया के सिंगजी ह्यून से 21-18 21-7 से हार कर बाहर हो गई। मिश्रित युगल में भी भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा, प्रणयजरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी मलेशियाई जोड़ी के सामने टिक नहीं सकी। और अब अगर बात की जाए आईपीएल की, तो थोड़ी ही देर बाद दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स अपने ही घर यानी फिरोजशाह कोटला मैदान में खेल रही है। थोड़ी देर पहले हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अगर अभी तक के हालात की बात की जाए तो दिल्ली ने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं 2 हारे हैं, और अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं। पिछले मुकाबले में हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 118 रन से हराया था, और उस मुकाबले की खासियत ये थी कि उस मुकाबले में सलामी जोड़ी जॉनी बेरेस्टो ने 114 रन बनाए थे और उनके जोड़ीदार डेविड वार्नर पूरे 100 रन बनाकर नाबाद थे। ये आईपीएल
जी, तो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद लगभग साथ साथ ही हैं, मतलब बहुत ज्यादा
अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हैदराबाद की बात की जाए तो जिस तरह से 118 रन के विशाल स्कोर से जीते जॉनी बेरेस्टो, डेविड वार्नर बहुत ही खतरनाक फॉर्म में, और ऐसा लगता है कि वार्नर तो 1 साल का जो प्रतिबंध झेल के आए गेंद से छेड़छाड़ के मामले में
जी जी।
तो अपना पूरा गुस्सा गेंद पर उतार रहे हैं।
लेकिन उधर दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी आदेश जी कुछ नहीं हो पा रहा है, कप्तान विराट कोहली की कप्तानी में भी
जी। देखिए, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, इसके अलावा हेटमायर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और गेंदबाजों की भी खस्ता हालत है, चारों मुकाबले हार गए हैं। सुपर फोर में पहुंचने के लिए अब उन्हें काफ़ी मैचेस जीतने होंगे। अब अगर दिल्ली पर वापस आएँ तो पिछले मुकाबले में ये 167 रन नहीं बना सके थे जीत के लिए और 14 रन से हार गए थे, और 10 रनों के भीतर ही इनके 6 विकेट गिर गए थे। तो दिल्ली को एक अच्छी शुरुआत मिले इसकी उम्मीद रहेगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने जिस तरह से 99 रन बनाए थे लेकिन अगले मैच में वो 0 पर आउट हुए। तो अब देखना ये होगा कि जो सलामी जोड़ी है पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, वो कितना अच्छा एक ओपनिंग स्टार्ट देती है, और उसके बाद नजर रहेगी ऋषभ पंत पर।
चलिए उम्मीद करते हैं, मैच लगभग शुरू ही हो चुका है, स्टेडियम में खिलाड़ी उतर चुके हैं, और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दोपहर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। राहुल वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पारंपरिक सीट अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है। यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ये सम्मान दोनों देशों के बीच रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दिया गया है। इथियोपियन एयरलाइंस हादसे के एक महीने बाद आई पहली आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालक दल आपातकालीन स्थिति के लिए तय की गई सही प्रक्रिया अपनाने के बावजूद विमान को काबू करने में नाकाम रहा। इस हादसे में विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलकराज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है BBCHindi.com। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।